सुर्खियों में
ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण के सूचक संविधान हत्या दिवस पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश और पत्रकार अश्विनी श्रीवास्तव।
भारत सरकार ने संस्कृति मंत्रालय और गृह मंत्रालय के माध्यम से औपचारिक रूप से अधिसूचित किया है कि 1975 में आपातकाल लागू होने की स्मृति में प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की सिफारिश पर संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच 21 महीने का लंबा आपातकाल लागू रहा था। सुरेश जी, सरकार के हर साल संविधान हत्या दिवस मनाने का क्या महत्व है, इसे क्यों मनाया जाता है?
संविधान हत्या दिवस हम इसलिए मनाते हैं ताकि हम अपने आने वाले पीढ़ियों को, हमारे जो वर्तमान पीढ़ी है युवाओं का, जो जेन जी कहे हैं आप, और उनको याद दिलाएं और पुराने लोगों को भी याद दिलाएं कि उन यातनाओं के बारे में, उन अत्याचारों के बारे में जो हमारे लोकतंत्र का सबसे एक आयाम था, जो हम कभी भुला नहीं सकते हैं, सबसे अंधकारमयी आपातकाल का जो दौर था, उस वक्त हमारे सभी का अधिकारों का हनन हुआ। हमारे जो संवैधानिक अधिकार है उसको जो है सस्पेंड कर दिया गया, जिसके तहत हम अदालतों में अपने अधिकारों को लेकर बात कर सकते थे। हजारों लोगों को जो है गिरफ्तारी हुई, जो भी सरकार के खिलाफ बोलते थे। अखबारों का लगभग चलना बंद हो गया, समाचारों पर पूरी तरह सूचना पर नियंत्रण रखा जाने लगा, और कई तरह की यातनाएं हमारे लोगों को, चाहे वो परिवार नियोजन जबरन हमारे युवाओं को, जो युवाओं ने शादी तक नहीं की उनको पकड़ के जो है जबरन उनको, उनके साथ जो है उनका स्टरलाइजेशन हुआ, उनका परिवार नियोजन हुआ। बहुत सारे हजारों लाखों झुग्गियां दिल्ली के कई इलाकों में, तुर्कमान गेट जैसे इलाकों में, उसको बगैर किसी नोटिस के लोगों को बिल्कुल बेरहमी के साथ जो है उनके मकान तोड़ दिए गए। और इसी प्रकार जो है आप मीडिया को टोटल ब्लैकआउट कर दिया, और 10,000 से ऊपर पत्रकारों की जो है गिरफ्तारी हुई, और ऑर्डिनेंस के माध्यम से अधिकारों का दुरुपयोग हुआ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती से रक्षा की। उन्होंने इसे भारत के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक बताया। सुरेश जी, आपने बहुत सारे पहलुओं के बारे में बात करी जो इमरजेंसी में हुए थे, लेकिन क्या कारण थे जिसे आधिकारिक रूप से इसे लगाया गया तत्कालीन सरकार द्वारा?
ये जून 25 रात को 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने सलाह दिया तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद साहब को कि वो आपातकाल के जो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संविधान के जो अधिकार है, इसमें आंतरिक जो समस्याओं को लेकर, इंटरनल डिस्टर्बेंस के तहत जो है उन्होंने ये घोषणा करने के लिए राष्ट्रपति को कहा। और ये जो घटना घटी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री के जो चुनाव, जो जून 75 में जो चुनाव हुए थे, उसको खारिज कर दिया था, जिसकी एक प्रतिक्रिया के रूप में ही देखा गया। और इसी के तहत जो है सभी हमारे जो मूलभूत संवैधानिक अधिकार है, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, उनको जो है पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया गया। हमारे जो नागरिक अधिकार है ये पूरी तरह बंद कर दिए गए। हमारे जितने विपक्ष के नेता रहे, चाहे वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी हो, मोरारजी देसाई हो, जगजीवन बाबू हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, इन सभी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया, इन सबको कारागार में बंद कर दिया गया। 10,000 से ऊपर जो है लोगों को जो है हमने नजरबंद किया, और मैं समझता हूं कि इससे नागरिकों का जो अधिकार है वो पूरी तरीके से कुचल दिया गया, और किसी प्रकार का विरोध या किसी प्रकार का इस सरकार के बारे में बोलना जो है वो, उसका अधिकार हमने खो दिया। मैं समझता हूं कि ये हमारे जीवन काल में, हमारे लोकतांत्रिक जीवन में एक बहुत बड़ा धब्बा रहा, एक काला अध्याय रहा है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे या संविधान हत्या दिवस जिसको मनाया जा रहा है, इसका एकमात्र लक्ष्य जो है, एकमात्र उद्देश्य जो है, हमारे नागरिकों को जागरूक करना है।
जी, आपने शुरुआत में बताया कि प्रेस की आजादी पर भी प्रतिबंध लगाए गए थे, बल्कि प्रेस की सेंसरशिप लागू कर दी गई थी। क्या आप इस बारे में और विस्तार से बता सकते हैं कि क्या हुआ था उस समय? क्या कोई पेपर निकालने पे पाबंदी थी? फिर सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे होता था?
ऐसे ही ये रातों रात ये घोषणा हुई, और ये तय किया गया कि जो सेंसर जो है इंस्पेक्टर ये तय करेंगे कि कौन सा समाचार जाएगा नहीं जाएगा। कुछ अखबारों ने, इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों ने, रामनाथ गोयनका जैसे बड़े संपादकों ने इसका विरोध करने का फैसला किया और उसका नतीजा ये हुआ कि आप देखेंगे कि सरकार और कड़ाई से गिरफ्तार करने लगी और इन्होंने ब्लैक सारे जितने भी संपादकीय है उसको खाली छोड़ा तो कहीं जो है काला पेंट लगा के छोड़ दिया, ये दिखाने के लिए कि ये हिस्सा जो है सरकार ने सेंसर किया है। यही नहीं, आप देखेंगे कि आपातकाल के समय सभी समाचार एजेंसियां जितनी भी थी, जो चार एजेंसियां थी जिसमें यूएनआई, पीटीआई, हिंदुस्तान समाचार और समाचार भारती, इन चारों को जो है विलय कर दिया गया और समाचार नाम का एक एजेंसी सरकार चलाने लग गई। केवल उसके माध्यम से ही सरकारी समाचार प्रेषित किया जाता था और किसी प्रकार का समाचार के लिए कहीं कोई स्थान नहीं था। और इसका नतीजा ये हुआ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे कई संगठनों ने, जिसे कहते हैं कि भूमिगत होकर अंडरग्राउंड में, उन्होंने बहुत सारे अखबार निकाले, बहुत सारे पर्चियां बांटी, जिससे लोगों के बीच में जागरूकता पैदा हुई, इसका विरोध किया गया और उसका नतीजा था कि हम लोग सूचनाओं के अभाव में उस वक्त, क्योंकि टेलीविजन भी सरकार के ही नियंत्रण में था, उस वक्त रेडियो भी सरकार के नियंत्रण में था, लेकिन लोकनायक जैसे लोगों ने, नेताओं ने हमें जो है संपूर्ण क्रांति जैसा संदेश देकर लोगों को जो है जगाया, लोगों के अंदर आजादी की अलख जगाई, उनको इस अत्याचार और दुराचार के खिलाफ लोगों को तैयार किया, मानसिकता तैयार की और उसका नतीजा हुआ कि 1977 में 21 महीने के आपातकाल के बाद जब चुनाव की घोषणा हुई, उस वक्त राष्ट्रीय आंदोलन और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते तत्कालीन प्रधानमंत्री को चुनाव घोषित करने पड़े और उसमें जनता पार्टी जो कई पार्टियों ने मिलकर बनाई थी, जिसमें हर विचारधारा के लोग थे, वामपंथी भी थे, दक्षिणपंथी भी थे, राष्ट्रवादी भी थे, समाजवादी भी थे, सब मिलजुल कर सबने जो है आके सरकार का अभिन्न अंग बने और उन्होंने विजय हासिल की और श्रीमती इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी को शिकस्त दी।
सुनील जी, आपातकाल के दौरान क्या लोगों को न्यायालय में न्याय पाने के लिए जाने पर भी रोक लगाई गई थी?
बिल्कुल, क्योंकि अदालतों के अधिकारों को पूरी तरीके से जो है, क्योंकि जैसे ही आप संविधान को सस्पेंड कर देते हैं और फंडामेंटल मूलभूत अधिकारों को जब सस्पेंड कर देते हैं, तो उसके बाद हम अदालतों में जा नहीं सकते अपने अधिकारों के जो है कि लागू करने के मांग को रखकर, क्योंकि वो अधिकार सिर्फ सरकार के पास रह गई है। तो इसमें जो है अदालतों को भी जो है पूरी, क्योंकि उस वक्त हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद ही ये तय किया गया, उस वक्त जस्टिस एच आर खन्ना जज हुआ करते थे, जो निडर होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री के खिलाफ जो है उन्होंने फैसला दिया, तो इसलिए उनको पता था कि लोग आखिरकार मीडिया और सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी, इसलिए संविधान के उन प्रावधानों को जो है पूरी तरीके से उसको स्थगित कर दिया गया था ताकि लोग राहत के लिए अदालतों के पास न पहुंचे। और वो कामयाब हुए उस मामले में और आखिरकार जिसे कहते हैं कि सत्यमेव जयते और जनता की विजय भी।
जी सुनील जी, आपको लगता है कि आपातकाल के इस काले अध्याय से उस समय की सरकार पूरी तरह से बच सकती थी, इसे नहीं भी लगाया जाना चाहिए था?
सत्ता के लिए जब एक दुराग्रह हो जाता है, सत्ता के लिए लोभ हो जाता है, सेवा की जगह सत्ता, इसलिए हम सुनते हैं कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री बार बार सेवा पर जोर देते हैं और सेवा करने के लिए सत्ता एक माध्यम है, लेकिन ताकत के लिए, धन के लिए सत्ता का दुरुपयोग करना, ये इसका प्रतीक था। लेकिन अगर वो चाहते तो वो दोबारा चुनाव लड़ने का प्रयास कर सकते थे, किसी और को कांग्रेस पार्टी से मनोनीत कर सकते थे, लेकिन वो कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते थे, तो मुझे लगता है कि निश्चित ही इससे बचा जा सकता था, क्योंकि ऐसा कोई माहौल नहीं था। युद्ध 71 में हो चुका था, उसके बाद जो है भारत का विजय हुआ था उसमें, और एक माहौल देश में था और निश्चित ही सरकार लोगों के बीच में पार्टी जा सकती थी और उनसे पुनः उनका विश्वास जीत सकती थी, लेकिन इसके बजाय ये आसान रास्ता चुन लिया कि लोगों के ऊपर आपातकाल थोप कर, उनके ऊपर अत्याचार करके जो जबरदस्ती से सत्ता में जो है काबिज हो।
जी, जनता पार्टी के मोरारजी देसाई जो उस समय प्रधानमंत्री थे इमरजेंसी के बाद वाले पीरियड में, उनकी सरकार ने ये कैसे इंश्योर किया कि आपातकाल जैसे हालत, उसके प्रावधान दोबारा देश में कभी भी ना लगाए जा सके
जी,
और कैसे नागरिकों की जो हित है उनकी रक्षा की जा सके?
नहीं, देखिए काफी निर्णय लिए गए ताकि उसे दोहराया ना जा सके, जैसे कि 44वें संवैधानिक जो संशोधन हुआ 1978 में, इससे संविधान और मजबूत हुआ और जो आपातकाल की जो ताकत है उसका प्रावधान जरूर है आपातकाल का, क्योंकि कभी भी देश के सामने आपातकाल की स्थिति आ सकती है, लेकिन उसका दुरुपयोग ना हो उसको सुनिश्चित करने के लिए जैसे दो तीन फैसले लिए गए कि 352 के अंतर्गत जो है आप सिर्फ युद्ध की स्थिति में या बाहरी आक्रमण की स्थिति में या आंतरिक बगावत की स्थिति में ही आप जो है आपातकाल को जो है आप उसको इंटरनल डिस्टर्बेंस जैसे कोई एक माहौल बनाकर आप नहीं कर सकते हैं, तो उस शब्द को जो है 1975 में उसको हटा दिया गया। तो इसका राजनीतिक जो इसका दुरुपयोग हो रहा था उस पर रोक लगा दी गई। इसी तरह जो है राष्ट्रपति मात्र प्रधानमंत्री के कहने पर जो है अब आपातकाल नहीं लगा सकते हैं, उनको पूरे जो कैबिनेट है मंत्रिमंडल केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है उसके लिखित सिफारिश पर ही जो है ये किया जा सकता है, यानी कि जो जिम्मेदारी है वो एक व्यक्ति से लेकर सामूहिक कर दिया गया। इसी प्रकार जो है दोनों सदनों को एक महीने के अंदर इसके एक विशेष जिसे कहते हैं बहुमत के साथ, यानी कि कुल जो जितने सदस्यता है उससे 50% ऊपर जो है उनके सहमति के साथ जो है इसकी सहमति लेनी पड़ेगी, अन्यथा जो है ये अपने आप समाप्त हो जाएगा। हर 6 महीने में इसको जो है आपातकाल को पुनः समीक्षा करने का प्रावधान भी जो है इसमें रखा गया है। इसी तरह जो सबसे बड़ा जिसका दुरुपयोग हुआ वो था कुछ कुछ जो हमारे मूलभूत जो अधिकार हैं उनको स्थगित कर दिया गया, लेकिन अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 ये जो हमारे जिसे हम कहते हैं कि हमारे जीने का अधिकार, हमारे जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है, ये इनको जो है आप सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, उसको जो है आप नहीं कर सकते हैं आपातकाल के दौरान। इसी प्रकार जो है पहले ये कहा गया था कि जुडिशरी या न्यायपालिका इसको रिव्यू या समीक्षा नहीं कर सकती है, लेकिन उसके बाद ये तय किया गया कि 44वें संशोधन के अंतर्गत कि अब आप जो है सिर्फ राष्ट्रपति के अनुमति पर्याप्त नहीं है, उसके लिए उस फैसले को जो है समीक्षा अदालत कर सकती है। इसी तरीके से राज्य में भी अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जब आपातकाल या इमरजेंसी लगती है या प्रेसिडेंट्स रूल हम जिसको कहते हैं, तो उसमें जो है वो 3 साल से ऊपर नहीं हो सकता है, वो 2 महीने के अंदर संसद की जो है सहमति की आवश्यकता है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रावधान जोड़ दिए गए, लेकिन सबसे बड़ा जो इसमें जरूरत है वो सावधान होने की है, सबसे ज्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है, सबसे ज्यादा जो नागरिक है उसका सशक्तिकरण है, ताकि इस तरह के आपातकाल लगाने का जरूरत फिर कोई भी सरकार ना करे।
जी, आपको लगता है कि आने वाली पीढ़ियों को भी 1975 के आपातकाल दौर के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए और ये कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है?
CBSE ने तो इस पर पूरा एक अध्याय शुरू किया है जिससे विद्यार्थियों को बताया जाता है कि आपातकाल के दौरान क्या हुआ, और इसके सिवा जन जागरूकता के बहुत सारे कार्यक्रमों की भी जरूरत है, मीडिया को भी जरूरत है कि आज के दिन जो है इसके बारे में जागरूकता करें, नागरिक जो भी संस्थाएं और संगठन है उनको भी बहुत जरूरत है, क्योंकि देखिए इस तरीके से लोग गलतियां दोहराने में वो कहते हैं कि जो राष्ट्र अपने इतिहास को भूल जाता है वो उन गलतियों को पुनः दोहराता है, तो ये दोहराने की नौबत नहीं आनी चाहिए, वो तभी हो सकता है जब हमारे नागरिक जो है वो शिक्षित हो इस विषय के बारे में, इसके बारे में जागरूक हो, इसके प्रति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो, और ये होना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं कि उस दिशा में बहुत काम हुआ है और अब किसी भी सरकार के लिए किसी भी नेता के लिए ये आसान नहीं होगा कि वह जो है इतनी आसानी से आपातकाल, ना संविधान में ऐसे प्रावधान है ना लोग इतने आसानी से जो है उसको सफल होने देंगे, ऐसा मुझे लगता है।
जी सुरेश जी, आपने बहुत विस्तार से आपातकाल के इस काले अध्याय के बारे में हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद, नमस्कार।
अभी आप सुन रहे थे लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण के सूचक संविधान हत्या दिवस पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक KG सुरेश और पत्रकार अश्विनी श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOn AIR और यूट्यूब चैनल NewsOn AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
सुर्खियों में